उन सात तत्वों के बारे में अपना भ्रम बना करके रखा और फिर उसी के अनुरूप हमारा ज्ञान भी हो गया। जैसी हमारी श्रद्धा थी वैसे ही हमने जानना शुरू कर दिया। पहले हम जैसा मानते थे वैसे ही हम जानते हैं और जैसा जानते हैं वैसे हमारा आचरण। इन जुत विषय में जो प्रवर्तता को जानो मिथ्या चरित्र, इसलिए एक लाइन लिखना पड़ी कि इस प्रकार के इल्यूजन के साथ, इस प्रकार की मिथ्या धारणा के साथ जो भी आचरण होता है वो सब आचरण मिथ्या चरित्र है। इसके बारे में भी कल अपन ने काफी डिस्कशन किया था कि क्यों हमारा वो मिथ्या चरित्र हो जाएगा, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, इसलिए हम जो भी आचरण करेंगे वो सब हमारा आचरण अशुभ माने ठीक नहीं माना जाएगा। इसको कोई एक्सप्लेन करेगा? मैं आज थोड़ा सा भूल रहा हूँ, मैंने कल बहुत कुछ बातें मैंने कल बड़ी मजे की कह दी है, पता नहीं किस मूड में। मैं उसको फिर से कैसेट को सुनूंगा, आपके पास है? अभी नहीं, याद करिएगा थोड़ा सा कि कल मैंने कोई एक चीज कही थी कि जब हमारा कॉन्सेप्ट गड़बड़ाया होता है तब हम कोई अच्छी चीज भी करते हैं तब भी उसके बेनिफिट्स नहीं होते, और जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है और फिर भी हम, ये उदाहरण दिया था जैसे कि हाँ वो अलग था। अब ये दिया था मैंने उदाहरण कि जैसे एक सम्यक दृष्टि है जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसको अगर किसी ने वो मच्छर ने काट दिया तो हो सकता है कि वो बेचैन हो जाए, और एक व्यक्ति जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, कैसे नहीं है कि वो कर रहा है पूरी तपस्या और तपस्या के दौरान सारे उपसर्ग परिचय सहन करता है, इसलिए करता है कि अगर थोड़ा गड़बड़ हो जाएगी तो फिर वो सुख नहीं मिलने वाला जो स्वर्ग में मिलेगा। उसकी पूरी अवधारणा ये है कि मुझे यार ये मान लो, दूसरा उदाहरण ले लो, चलो मैं अगर आज उपास ठीक ठीक कर लूंगा तो कल मेरे लिए बहुत बढ़िया बढ़िया मिठाइयां मिलने वाली हैं, है ना? ये उदाहरण दिया था। अब मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि मैं उपवास इसलिए करूं, अगर मेरा आज उपवास टूट जाएगा तो सब लोग थू थू करेंगे और वो कहेंगे अब नहीं, अब नहीं मिलता है। अच्छा बढ़िया उपवास हो जाएगा तो कल मुझे बहुत सुख सुविधा, अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी। वो इसलिए अपने उपवास को ठीक ठीक कर रहा है क्योंकि उसे कल का लालच है। और एक व्यक्ति है जिसने उपवास तो ले लिया, शक्ति कम थी, शाम को थोड़ी सी आकुलता हो गई उसे। अरे तुम्हें तो आकुलता हो जाती, जबकि उसका मन ये था कि मुझे कर्मों की निजरा करनी है इसलिए मैं उपवास कर रहा हूं। उसका उद्देश्य था कर्मों की निर्जरा के उद्देश्य को लेकर के उपवास करने वाला हो सकता शाम को थक करके और थोड़ा सा शिथिल हो जाए तो हम उससे गड़बड़ नहीं कहेंगे, बल्कि जिसका कॉन्सेप्ट ये है कि मैं तो आज उपवास कर लूंगा तो कल मुझे अच्छी अच्छी चीजें खाने मिलेंगी, और वो बड़े ठाट के साथ उपवास करता है तब भी वो उपवास उसका सार्थक नहीं, इसलिए उसको मिथ्याचारित मूर्ख बोलेंगे। क्योंकि इन जुत विषय में जो इस प्रकार के कॉन्सेप्ट को लेकर के जो ये सारी चीजें, इतना ही हमारी भारतीय संस्कृति और पश्चिम में फर्क है। वो सारा कुछ हिसाब रखते हैं एक एक बैलेंस डाइट का, काहे के लिए हमारा शरीर रुग्ण ना हो जाए, उनका कॉन्सेप्ट ये है। और हम भोजन इत्यादि की सामग्री छोड़ते भी हैं तो हमारी उद्देश्य हमारा कर्मों की निर्जरा का। हम धार्मिक दृष्टिकोण से उपवास करते हैं, और अगर वो फास्ट कर रहे हैं तो फिजिकली फिट होने के, फिजिकल फिटनेस के लिए सारी चीजें हैं उनकी, अगर वो आपके डाइट में कोई कंट्रोल करते हैं, और हम डाइट में कंट्रोल करते हैं तो हमारी अप्रोच अलग है। तो यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि मिथ्या चरित्र वो है जिसमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, वो सारा आचरण मिथ्या है। ये एक चीज थी। फिर इसके बाद ज्ञान भी इसी तरह का है कि ज्ञान बहुत सारा क्यों ना हो लेकिन हमारा एटीट्यूड क्लियर नहीं है। चार बातें हैं ज्ञान के साथ कि हम जो कुछ भी ज्ञान अर्जित करें उसमें हमारा विजन क्लियर होना चाहिए। विजन क्लियर से मतलब हम हर पहलू से, हर पॉइंट ऑफ व्यू से उस चीज को सोचेंगे, किसी एक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, एकांतवाद दूषित समस्त, एक लाइन में एकांत नहीं होना चाहिए। आपने कोई बात कही तो हम फौरन कहेंगे कि हाँ ये पहलू ठीक है, एक पहलू और है इसका। कम से कम हर चीज के सोचने के दो पहलू हैं, एक स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ व्यू है, एक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू है। जैसे कि अपन एग्जाम्पल क्या लेंगे, जब कोई हमसे पूछे कि वास्तव में आप क्या हैं, मैं जीव हूं, वास्तविकता तो ये है, लेकिन मैं जीव होने के साथ साथ मनुष्य भी हूं, मैं मनुष्य होने के साथ साथ पुरुष भी हूं, मैं पुरुष होने के साथ साथ प्रोफेसर भी हूं, या कि मैं डॉक्टर हूं या जो भी हूं, ये सारी चीजें भी सच्चाई है उतनी ही जितना कि मैं जीव हूं, जितनी सच्चाई मेरे जीव होने की है उतनी ही इन सब चीजों की। तो ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, वो स्टैंडर्ड पॉइंट है। इन दो दृष्टियों से हमें हर चीज के बारे में देखना पड़ेगा। सातों तत्वों को हम दोनों दृष्टियों से जहां इंटरप्रेट किया जाए वही ज्ञान सच्चा है, अन्यथा वो मिथ्या ज्ञान। और मिथ्या ज्ञान की और क्या परीक्षा है, तो कहते व्रत नियम संयम करने को जो व्यर्थ मानता है और विषय कषाय का पोषण करता है। जहां पर उपदेश इस तरह का दिया जाए कि व्रत नियम संयम से क्या होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला। मतलब अल्टीमेटली क्या करूं मैं, भोग विलास में लगा रहूं तो विषयों का पोषण हो रहा है। जिस शास्त्र के द्वारा, जिस शास्त्रकार के द्वारा अगर विषय कषाय का पोषण होता है तो वो शास्त्र और वो शास्त्रकार वो सब हमारे यहाँ मिथ्या ज्ञान मारा है। विषयादिक पोषक प्रशस्त और रागादि कुमतिन कर श्रुताभ्यास, और जो रागी के द्वारा और कुमत अर्थात जिसमें कॉन्सेप्ट ही गड़बड़ है, मोक्ष का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं, वीतरागता का कॉन्सेप्ट ही नहीं। कितनी बातें थी कि अर्थात जिसमें कॉन्सेप्ट ही गड़बड़ है, मोक्ष का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं, वीतरागता का कॉन्सेप्ट ही नहीं। कितनी बातें थी कि जो वीतरागी के द्वारा कहा गया हो, जिसमें वीतरागता का पोषण हो, विषय कषाय का और अनेकांतात्मक हो, ये तीन चीजें तो होनी चाहिए। अगर ये तीनों नहीं है, अनेकांत की जगह एकांत है, वीतरागता की जगह राग द्वेष और विषय कषाय है, और कहने वाला भी वीतरागी नहीं है, तो हम उसको मिथ्या ज्ञान ही मानेंगे। इस तरह ये मेरे ख्याल से पूरा हुआ था। और हाँ, चारित्र भी जो ख्याति लाभ पूजा विचार, जो यश वैभव और ख्याति के लिए जो आचरण का पालन किया जाता है, जो अपने उदाहरण अब भी दिया था मैंने कि मुझे कल अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी, लोग मेरी वाहवाही करेंगे, बड़ा अच्छा जुलूस निकलेगा, और सहन कर लो थोड़ा, क्या फर्क पड़ता है, एक दिन की बात और है, 10 दिन का हो जाएगा तो फिर देखो अच्छा खासा जुलूस निकलने वाला है। इसलिए जो है 10 दिन के उपवास कर लिए, ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं। भले मैं 9 दिन के करूं, लेकिन मेरा उद्देश्य था कर्मों की निजरा, और कर्मों की निजरा होती निराकुलता से, और मुझे 9वें दिन आकुलता होने लगी है। इससे बेहतर है कि मैं आकुलता पूर्वक करूं, निराकुल होने के लिए मैं थोड़ा सा भोजन ले लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं।
यही सबसे डिफिकल्ट है, बहुत किताब में लिखा है
कंचन और कामनी, कंचन और कामनी छोड़ना आसान है, कीर्ति और ख्याति छोड़ना। यही तो अपन लोग मैंने व्रती भी, व्रती को भी लेके ज्ञानी को भी, जो ज्ञान व्यान प्राप्त करते हैं उनको भी यश ही है अल्टीमेटली गेन करने का, व्रत नियम और ज्ञान दोनों। मैं बहुत सारे शास्त्र जानता हूँ तो मेरी बहुत वाहवाही होगी, या मैं बहुत सारे व्रत नियम संयम करता हूँ तो वाहवाही होगी, ये दिनों अधिक देखने में मिल जाता है। इसलिए फिर क्या होता है कि व्यक्ति का रुझान हट जाता है उधर से, कह रहे व्रत नियम का है इसलिए करना है।
बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू डिफेक्ट हो जाता है,
कॉन्सेप्ट नहीं। मैंने अपने को ये ध्यान रखना है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपकी जो भी आप ज्ञान अर्जित कर रहे हैं या आचरण कर रहे हैं, अगर आपका कॉन्सेप्ट, आपका जिसको हम कहते भैया अभिप्राय क्या है, ये तो बता दो आप, ये सब कर रहे हो अभिप्राय क्या, अभिप्राय शुद्ध है तो फिर सारी चीज शुद्ध है, और आपका अभिप्राय ही गड़बड़ है तब तो फिर कुछ भी अच्छा भी करिएगा तब भी वो गड़बड़ ही है। ये दृष्टिकोण था। तो जो ख्याति लाभ पूजा चाह धरीकरण क्या है, वो विविध 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 आत्म अनात्म के ज्ञान ही जे जे करनी तन करें, इतना जो है। तो दूसरी ढाल में हमने अपनी अज्ञानता का परिचय पाया कि हम कितने अज्ञानी हैं, और एक चीज और समझी थी कि अकेली कुछ बातें जान लेने का नाम ज्ञानी नहीं है, वास्तविकता को जानने का नाम यहाँ ज्ञान बना है। हमारी अज्ञानता इसलिए है, वैसे हम दुनिया भर की बहुत सारी बातें जानते हैं, पर फिर भी हम ठाट से अपने को अज्ञानी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम जो वास्तव में जानने योग्य था वो नहीं जान रहे, इसलिए हम अज्ञानी हैं। और अज्ञानता में तीनों चीजें आ गई कि हमारा कॉन्सेप्ट, हमारी मान्यता भी क्लियर नहीं, जो हम मानते हैं वो भी ठीक नहीं, जो हम जानते हैं वो भी ठीक नहीं, जो हम आचरण करते हैं वो भी गड़बड़ है, तीनों चीजें गड़बड़ हो गई हैं, यही हमारी अज्ञानता है। और तीन ही चीजें व्यक्ति के जीवन में है, कुछ उसकी अपनी अवधारणाएं होती हैं, कुछ उसके अपने विचार होते हैं, कुछ उसका अपना आचरण होता है, और तीनों ही गड़बड़ हैं, तो ये संसार के भ्रमण का ही कारण होगा। और मैंने पहली ढाल में जो कहा गया था एक शब्द कि मोह की वजह से या अज्ञानता की वजह से हमारा भ्रमण है, तो दूसरी ढाल में जाके बता दिया कि आपका मोह या अज्ञानता ये है। अब जैसे कि शुरू शुरू में अपन ने शुरुआत की थी कि हमें किसी ने ये बताया कि आप अंधेरे में हैं, शुरू शुरू में तो हमने मानी नहीं, कोई आके कहे कि आपके दुख का कारण अंधेरा है तो हम ऐसे जैसे मान लेंगे, तो हमने परिचय करवाया कि देखो प्रकाश होने पर ये चीज ऐसे दिखाई पड़ती है, अंधेरे में ये ऐसी दिखती है, अब तो मानो, हाँ ठीक बात है मैं अंधेरे में हूं इसलिए ऐसे दिख रही है, तो अंधेरा तो मान लिया आपने, पर अभी भी आप अंधेरा छोड़ने तैयार नहीं होंगे जब तक कि मैं प्रकाश के बारे में ना बताऊं। तीसरी ढाल में अब ये बताते हैं कि हमारी अपनी अज्ञानता को अगर हम छोड़ देवें तो फिर हमें ज्ञानी होने के लिए क्या क्या चीजें ग्रहण करना पड़ेंगी, ये तीसरी ढाल में अब सीधा सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र अब यहाँ से शुरू, अब पूरा मोक्ष मार्ग यहाँ से बताएंगे। अभी तो संसार भ्रमण और संसार भ्रमण का कारण बता दिया, अब मोक्ष और मोक्ष का मार्ग इसको शुरू करें। और फिर मोक्ष मार्ग में चौथे उसमें बता देंगे कि चौथी ढाल में कि मोक्ष मार्ग पर चलने वाले जो मैंने फॉलोअर्स हैं उसमें भी श्रावक के लिए, और फिर पांचवी और छठी ढाल में जो मोक्ष मार्ग पर चलने वाले मुनि हैं उनकी चर्चा करते हैं। इस तरह से ये छह ढालों में एक पूरी माने हमारे दुख का कारण, हमारे दुख का कारण, दुख से बचने का उपाय और सुख की स्थिति, या कि सुख के उपाय और सुख की स्थिति। अगर आप थोड़ा सा बौद्ध दर्शन के बारे में विचार करेंगे तो बौद्ध दर्शन में चार आदि सत्य हैं। दुख है स्वीकृति, है तो कोई ना कोई कारण है इस बात की स्वीकृति, कारण है तो उससे बचने का कोई उपाय है, और बचने के बाद की अवस्था, यही चार आरी सत्य है। दुख, दुख का कारण, दुख का निरोध और सुख की स्थिति, अगर देखें तो यही सात तत्व हैं। दुख किसे होता है? जीव को होता है। दुख के कारण क्या है? आश्रय और बंध। सुख का उपाय क्या है? संवर और निद्रा। सुख की स्थिति क्या है? और कुछ इतना ही में है सारा कुछ। दुख है, दुख के कारण है, दुख से बचने का उपाय है, और कोई सुख की स्थिति है। कुल मिलाकर के आप कहीं से भी, आप किसी ग्रंथ को पढ़ेंगे, रत्नगण शाह का चार पढ़ेंगे, छेड़ाना पढ़ेंगे, जो भी पढ़ेंगे, अप्रोच कुल मिला के बस इंटरप्रिटेशन पर अलग अलग है, अलग अलग ढंग से किया। तब तीसरे उसमें कहते हैं कि आत्म को हित है सुख, आत्मा का हित किस में है? सुख में है। तो फिर सुख की क्या डेफिनेशन है आपकी? ये तो कह दिया आपने कि हमारे आत्मा का हित सुख में है, तो सुख की डेफिनेशन बताओ। तो कहते सो सुख आकुलता विन कहिए, पूरा एक एक व्यवस्थित है कि ठीक है, हमारे सुख की अप्रोच आकुलता से जो रहत अवस्था है वही सुख है। तो फिर ये आकुलता से रहत स्थिति कहां पर है? आकुलता शिवमाही न ताते, शिवमाही आकुलता ना। आकुलता अगर नहीं है तो कहां नहीं है? मोक्ष में नहीं है। ठीक है, तो अब क्या करें हम? ताते शिवमग लाग्यो चाहिए। अब जहां पर नहीं है वहां पहुंचने का उपाय करना चाहिए। हमारा उद्देश्य क्या है? सुख पाने का। और हमारा सुख का कॉन्सेप्ट क्या है? निराकुल अवस्था। निराकुल अवस्था तो भाई मोक्ष में मिलती है, तो फिर क्या करें हम? तो वहां पहुंचने का उपाय शुरू करो। इस तरह से कह करके और हमें मोक्ष का मार्ग बता रहे हैं, क्योंकि हम हरेक, अब इससे ये चीज और क्लियर हो गई कि हरेक को मोक्ष का मार्ग नहीं बताया जाएगा, ना बताने की कोशिश करना हरेक को मोक्ष का मार्ग। पहले पूछ लेना कि क्या चाहते हो, किसमें अपना हित मानते हो? हम तो सुख चाहते हैं। कौन सा वाला चाहिए? भौतिक चाहिए या आध्यात्मिक चाहिए? निराकुलता वाला चाहिए या संसार वाला चाहिए? तो निराकुलता वाला चाहिए, तो भाई वो तो मोक्ष में मिलता है, तो फिर क्या उपाय? ऐसा पूछने पर किमनु खलु आत्मने हितम स्यात इति, यही चीज सर्वार्थ सिद्धि में सबसे पहले प्रश्न करवाते हैं शिष्य से। आचार्य महाराज के सामने शिष्य कहता है किमनु खलु आत्मने हितम स्यात इति, भगवान आत्मा का हित किसमें है? तो कहते मोक्ष, मोक्ष में है। तो कस प्राप्ति उपाय, अगर मोक्ष में आत्मा का हित है तो उसकी प्राप्ति का उपाय क्या है? तब कहते सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, ये उसकी प्राप्ति का उपाय है। वही चीज यहां पर भी कह रहे हैं कि आप सुख चाहते हैं तो सुख तो निराकुलता में है, निराकुलता मोक्ष में है, तो फिर मोक्ष पाने का उपाय क्या है? मोक्ष का मार्ग पर चलना पड़ेगा। तो कहते सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव मग, मग शब्द इधर तोड़ना पड़ रहा है भंग होने की वजह से, पर शिव मग है वो इकट्ठा। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव मग सो द्विविध विचारो,
इसमें तो कमांड ही दिया
शिव मग। हाँ, पर बीच में पढ़ने पढ़ते समय अल्पराम लगाना पड़ेगा, शिव शिव में अल्पराम लगेगा। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव मग सो द्विविध विचारो, जो सत्यारत रूप सुनिश्चय कारण सो व्यवहार। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया पंडित जी साहब ने यहाँ पर, और यही गलती अपन ने अपने उसमें भी करी। मोक्ष मार्ग सीधा कहना था कि सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव मग, इतना हो गया। मोक्ष का मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र, यही मोक्ष का मार्ग है। ठीक है, अब ये मोक्ष का मार्ग दो प्रकार से इंटरप्रेट किया है, दो प्रकार का है ऐसा नहीं, दो प्रकार से उसका इंटरप्रिटेशन है। आप प्रोफेसर साहब आ
जाए, बहुत जगह है।
देखो हमने एक चीज देखी है इस संसार में कि संकोची व्यक्ति मारा जाता है दूर दूर आहार में भी हम देखते हैं कि जो जितना संकोच करता बेचारा पीछे खड़ा उसके देखने वाला कोई नहीं अगर हम नहीं देखें तो वो छूट जाएगा उसमें खड़े रह जाएगा वो ऐसे यहाँ कर भी संकोच नहीं करिएगा अगर अच्छी चीज पाने के लिए कोशिश कर रहा है तो अच्छा फिर से मानसिकता बनाइएगा सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र ये मोक्ष का मार्ग है मोक्ष का मार्ग तो एक ही है थोड़ा सा फिर कंसंट्रेशन करिएगा मोक्ष के मार्ग कितने हैं भैया मोक्ष का मार्ग एक ही है वो किस रूप है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप है एक चीज और इसमें समझ लें कि अकेला सम्यक दर्शन मोक्ष का मार्ग नहीं अकेला सम्यक ज्ञान और अकेला सम्यक चारित्र मोक्ष का मार्ग नहीं है ट्रिनिटी तीनों की एक रूपता सम्यक दर्शन ज्ञान और आचरण इन तीनों की एक रूपता ही मोक्ष मार्ग है और मोक्ष मार्ग एक ही है लेकिन उसे इंटरप्रेट किया गया है दो प्रकार से इसलिए लिख दिया सो दुविध विचारो अगर कभी मोक्ष मार्ग का विचार करो तो दो तरह से विचार करना एक कारण है और एक कार्य है एक साधन है एक साध रूप है व्यवहार साधन है और निश्चय साध्य है जो सत्यार स्वरूप सुनिश्चय कारण सो व्यवहारो बस इसका इंटरप्रिटेशन हमसे आप पढ़ रहे हैं इसलिए दूसरा कर रहा हूँ किसी और से पढ़ेंगे तो दूसरा पढ़ेंगे वो सीधा सीधा अर्थ लगाएगा जो सत्यार्थ जो सच्चा है सो निश्चय मोक्ष मार्ग और जो झूठा है सो व्यवहार मोक्ष मार्ग बस यहाँ से मत बदलना शुरू हो गया यहाँ से झगड़ा शुरू हो गया इतनी सी बात है जबकि कह रहे हैं सत्यार्थ अर्थात जो हमें प्राप्तव्य है जो हमें प्राप्त करना है वो तो है निश्चय और जो उस प्राप्ति के लिए उपाय कारण है सो व्यवहार है और कोई विशेष चीज नहीं है ना लोग मजा तो यही है ना लेकिन इंटरप्रिटेशन करने वाले पे डिपेंड करता है और सामने बैठने वाले को तो हाँ कहना पड़ेगा बराबर कहना पड़ेगा वही लोग बैठेंगे जो बराबर कह सकें नहीं तो कैसे बैठेंगे आप नहीं तो फिर वो दूसरी सभा में नहीं चले जाते इसमें आप इस वाले इसके पीछे भी पढ़ो अगर भावार्थ में तो उसमें भी यही लिखा हुआ है ये पूरी किताब के भावार्थ में मैं वही किताब हाथ में लेके पढ़ रहा हूँ ताकि मैं बताते चलूं कि इसका भावार्थ ऐसा नहीं निकालना है अपने को इसमें जैसा इन्हें निकाला है अब ये कहाँ से निकला ये कोई पूछने वाला नहीं वहां पर क्योंकि आज तक ये नई बात है तो सुनी नहीं तो अब जब सुनी नहीं तो हम जब बता रहे हैं तो स्वीकार करो नई बातों के लालच में हमने कितनी गलत चीजें सीख ली है इसलिए एक जगह लिखा कि अज्ञान कुज्ञान से अज्ञान भला अज्ञानी गया हो मगर उल्टी सीधी बातें ने सीख ली नहीं जाना स्वच्छ है नहीं जानो कोई बात नहीं लेकिन गलत जानने से तो अज्ञानता इसमें कहीं अर्थ नहीं निकलता लेकिन इसी ये बाद में कहेंगे आत्मा स्वयं सुख रूप है इसलिए आत्मा की आश्रय से सुख प्रकट हो सकता है किंतु किसी निमित्त या व्यवहार के आश्रय से सुख प्रकट नहीं होता झूठी बात है मैंने व्यवहार को इस व्यवहार को कारण लिखा कारण सो व्यवहार हो अगर उस मोक्ष निश्चय मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होना है तो पहले कारण व्यवहार तो आपको अपना नहीं पड़ेगा सीधा निश्चय कोई पा नहीं सकता मैं इसको दूसरी तरह से कहता हूँ कि मुझे पहले पांचों पापों से बचना मुश्किल है तो मैं पांचों पापों से बचने के पहले कोशिश करूं और एक स्थिति में पहुंचूंगा जब मेरे द्वारा पांचों पापों का किया जाना मुश्किल हो जाए और पहुंचना मुझे वहां और मैं पहले यही कहूं कि आत्मा तो पांचों पाप कर ही नहीं सकती इसलिए पांच पाप हो ही नहीं सकते तो पांच पाप को छोड़ना तो व्यवहार है ऐसा इंटरप्रिटेशन करना चाहूं तो ऐसा कर सकता हूं बात वही है
लेकिन एमए की पढ़ाई पहली कक्षा करा देना
पहुंचना मुझे वहां है कि जब मेरे द्वारा पाप होना मुश्किल हो जाए मैं आत्मा की उस अवस्था में पहुंच गया हूं पवित्र अवस्था में जहां मेरे द्वारा पाप हो ही नहीं सकता लेकिन मुझे पहले प्रयास करना पड़ेगा कि पाप को छोड़ूं तब तो फिर मैं मेरे द्वारा बाद को ये स्थिति आएगी कि मुझसे जैसे कि कोई व्यक्ति नियम दे ले कि मैं किसी को नहीं मारूंगा उसके हाथ में कोई बंदूक भी दे देवे कि तुम्हें एक एक मारने की छूट वो कहेगा मार ही नहीं सकता भाई आप कैसी बात कर रहे हैं छूट उठ दो चाहे कुछ करो मैं मार ही नहीं सकता मेरे मेरा कॉन्शियस ही अलाउ नहीं करेगा लेकिन कॉन्शियस इसका अलाउ नहीं करेगा जिसने पहले त्याग करा है तो ये कह रहे हैं कि जो त्याग किया जाता बाहर से वो तो है व्यवहार और जो उस त्याग के द्वारा जो अंतरंग के परिणाम और विशुद्धि आती है वो निश्चय है अब यहाँ गड़बड़ हो गई आप निश्चय में पहुंचाना तो चाह रहे हैं लेकिन आलम्बन नहीं आलम्बन को झूठा कह रहे हैं सीढ़ियां झूठी हैं, हम भी कह रहे हैं कि झूठी हैं क्योंकि हमें छत पे पहुंचना है, लेकिन जब तक नहीं पहुंची जब तक तो सच्ची है। पहुंचने के बाद कहेंगे कि उठाओ इनको अलग कर दो, कोई आवश्यकता नहीं। तो ऐसा हमें मानना पड़ेगा कि मोक्ष महल तक पहुंचने के लिए सीढ़ी व्यवहार है और मोक्ष महल में पहुंचना वास्तव में निश्चय है, वो सच्चाई है। लेकिन एक सच है एक झूठ है ये कहीं नहीं दिखा। सच है मतलब साधन, साध वही है। तो जो सत्यार्थ रूप से निश्चय, जो मेरे लिए सत्यार्थ अर्थात जो मेरे लिए प्राप्तव्य है, वो तो है निश्चय, और कारण जो है वो व्यवहार है। इस तरह व्यवहार मोक्ष मार्ग, अब अपन दो तरह से कह सकते हैं, एक निश्चय मोक्ष मार्ग है एक व्यवहार मोक्ष मार्ग है। निश्चय मोक्ष मार्ग प्राप्तव्य है, व्यवहार मोक्ष मार्ग उसके लिए साधन है। अब इसी दृष्टि से अपन पूरा इंटरप्रिटेशन करेंगे, क्योंकि अपने सामने दो प्रकार से अपन विचारों शब्द लिखा है इन्होंने, मानो नहीं लिखा, आप स्वयं विचार करना। मोक्ष मार्ग तो सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र रूप है, उसका विचार दो प्रकार से करना। पहला जो प्राप्तव्य है वो निश्चय है, और जिस तरह से प्राप्त किया जाएगा उसका जो उपाय है वो व्यवहार है। मैं दोनों की परिभाषा बताए देता हूँ इन चार लाइनों में। पहले बताते हैं कि प्राप्तव्य क्या है मुझे वास्तव में, तो कहते पर द्रव्यन ते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला। सम्यक दर्शन की यस, सम्यक कहो सम्यक दर्शन कहो, बात एक ही है भैया है, नहीं तो आप सोचेंगे सम्यक के मायने क्या है। सम्यक प्रकृति है जिसके उदय में सम्यक दर्शन होता है, तो सम्यक दर्शन कहो या सम्यक कहो। तो कहते हैं कि पर द्रव्यों से भिन्न जो अपनी आत्मा है उसमें रुचि होना। अभी पहले क्या कहा था या आगे जाकर के व्यवहार में क्या कहेंगे, सात तत्वों की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन। अभी तक अपन मोटा मोटा पढ़ते आ रहे थे, सात तत्वों की श्रद्धा तो साधन है। अल्टीमेटली मुझे किस पे श्रद्धा करनी, अपनी आत्मा पर। पहुंचना कहाँ है मुझे, अपने आत्मा पर पहुंचना, तो वो हमारा प्राप्तव्य है। तो कह रहे हैं कि पर द्रव्यों से भिन्न अपने आप में रुचि ही सम्यक दर्शन, और आप रूप को जान पनो, और मेरा अपना क्या स्वभाव है इस बात को जानना ही सम्यक ज्ञान है, और आप रूप में लीन रहे थिर सम्यक चारित्र सोई, और अपने आप में ही लीन हो जाने का नाम सम्यक चारित्र है। वास्तव में तो परिभाषा ये। अब वास्तव में जैसे ही कहा तो अब आगे कहेंगे तो वो सब झूठ है। ऐसा अगर मैं वास्तव में कहता हूं तो अब जब व्यवहार की बात करूंगा तो कहूंगा कि वैसे ये है नहीं पर वास्तव में तो वही है। ऐसा नहीं अर्थ ले लेना कि वास्तव में ये है और बाकी जो व्यवहार बताऊंगा तो वो वास्तव नहीं है। नहीं, वो इसकी प्राप्ति का उपाय है पर वो पीछे छूट जाता है इसलिए वास्तविक नहीं, ऐसा कह लो। पर झूठा है ऐसा नहीं कह सकते एकदम, वो प्राप्तव्य नहीं है। प्राप्तव्य ये है जो प्राप्त करने योग्य है, उसके लिए कारण बनेगा आगे के उसमें वो बताएंगे। अब व्यवहार मोक्षमक सुनिए हेतु नियत को होई। अब फिर यहां डिक्लेयर कर दिया उन्होंने कि ये जो निश्चय मोक्ष मार्ग है उसका हेतु उसका कारण या उसका साधन वही व्यवहार मोक्ष मार्ग है जिसको मैं आगे की चार लाइन में कहते हैं, और वही चार लाइन वही है जो कि अपन पढ़ चुके हैं। ये कैसा जीव अजीव तत्व अरु आश्रव बंध अरु संवर जानो निर्जर मोक्ष कहें जिन तिनको त्यों ज्यों कहते हो सरधानो। जैसे भगवान ने सात तत्वों का स्वरूप कहा है वैसा का वैसा मुझे उस पर श्रद्धान करना, ये व्यवहार सम्यक दर्शन। जब ऐसा श्रद्धान करूंगा तब फिर मेरी अपने इन सात तत्वों के बीच में से आत्म तत्व की तरफ रुचि होगी, और जिस दिन मेरी सात तत्वों के बीच आत्म तत्व पर रुचि हो गई मैंने प्राप्त कर लिया जो मुझे प्राप्त करना था। देखो जिस व्यक्ति को मैं सात तत्व नहीं मालूम उसको आत्मा आत्मा की सुध होगी क्या, और हम कह रहे हैं कि आत्म रुचि का नाम। तो वो कहता आत्म क्या है ये, तो कहते ये सात तत्व है जीव अजीव आश्रवन संवर, इनमें एक आत्म तत्व है। जीव तत्व और आत्म तत्व में जरा सा फर्क का प्रबंध करना चाहे, वैसे जीव और आत्मा में कोई फर्क नहीं, दोनों सिनोनिम्स हैं, पर जीव में तो सामान्य होता है, आत्म में मैं अपने व्यक्तिगत विशेष की तरफ ध्यान देता हूँ। आत्म रुचि से मतलब ये नहीं है कि इनमें रुचि, जीव रुचि क्यों नहीं कह दिया सब जीवों में रुचि लो, ऐसा नहीं। आत्म रुचि कहने का उनका क्या है कि मैं अपनी आत्मा में रुचि लूं, मैं अपने आत्मा के स्वभाव की तरफ देखूं। तो ये व्यवहार हो गया है सोई समकित व्यवहारी, अब इन रूप बखानो तिनको सुन सामान्य विशेषे दृढ़ प्रतीति पुरानो। अब व्यवहार को पहले निश्चय के बारे में कोई प्ररूपण नहीं है, इतने में खत्म हो गया निश्चय का चैप्टर क्लोज चार लाइनों में कि हमें पाना तो ये है पर उसका उपाय क्या है ये बताते हैं। तो सम्यक दर्शन सात तत्वों के ज्यों के त्यों जैसा भगवान ने स्वरूप कहा उस पर वैसी श्रद्धा करना, ये है सोई समकित व्यवहारी। अब इन रूप बखानो, अब इन सबका रूप बताएंगे हम, जो हमने सात तत्व कहे हैं उन सबका एक्सप्लेनेशन सामान्य रूप से और विशेष रूप से कहेंगे। तुम उसमें सुन करके दृढ़ प्रतीति उर आनो, अपने हृदय में इनके प्रति अपनी दृढ़ता रखना। प्रतीति मतलब अनुभव, तुम इनको अपने भीतर रियलाइज करना, जान के मत बैठ जाना, सबसे खतरा, अकेले जान के बैठ जाने वाले के साथ बहुत खतरा है। जब उससे कोई पूछता है तो रटा रटा बता देता वो कि सात तत्व जी है और इनका स्वरूप ये भगवान ने कहा, और भीतर में तो भीतर में कुछ नहीं अनुभव। इसलिए कह रहे हैं एक लाइन में, दृढ़ प्रतीति और आनो और में हृदय में अपने इस बात का दृढ़ता से अनुभव करना, इसी को टोडर मल जी ने भाव भासना कहा है। इसी को उदाहरण दिया है कि छोटे से बेटे से कहा कि घड़ा लाओ, हजारों चीज के बीच में से वो घड़ा ले आता है। अकेले घड़ा शब्द सुन करके उसके भीतर क्या क्या हुआ है ये अपन को बाहर नहीं दिखता। किसी और से कह दो जो अपरिचित है उससे घड़ा कहो तो क्या कहेगा कि घड़ा ऐसा ऐसा होता है, ऐसा उसका स्वरूप है, बस बता देगा ले आओ। जिसको उस चीज का अनुभव होगा, जिसने देखा होगा कि ये घड़ा कहलाता है, वो फौरन उत्ते चीजों में से, नहीं तो वो अपनी किताब लेके जाएगा कि घड़ा का स्वरूप ये होता है, हाँ जी इसमें मिलता है, ये भी ठीक है, ये भी मिल रहा है, लेकिन कुछ कंफर्म नहीं इतनी चीजों में से कौन सा लिखा था, ये मिल तो सब लक्षण इसमें रहे। और अगर एक बार माने जाकर के बता दिया कि बेटे ये घड़ा है, और घड़ा देखने के बाद उसका स्वरूप बताया है, तो फिर देखिएगा उस पर प्रतीति, पहले स्वरूप पढ़ लिया उसने, फिर उसको बता भी दिया किसी अनुभवी ने जाकर के कि ये घड़ा है, अब गलती नहीं हो सकती। थ्योरी और प्रैक्टिकल यही कहना चाह रहे हैं यहां पर कि मैं जो स्वरूप बताऊंगा उसको अपने हृदय में अनुभव में लाने की कोशिश करें, तब वो सम्यक दर्शन कहलाएगा। अकेले सात तत्वों को जान लेने का नाम या उन सात तत्वों के नाम रट लेने का नाम सम्यक दर्शन नहीं है। जीव कहने से अपने आत्मा का अनुभव होना चाहिए, अजीब कहने से इन सब चीजों को अजीब की तरह इनके साथ व्यवहार होना चाहिए। ये इनका एक इतनी सी लाइन में, लेकिन इसको इस तरह एक्सप्लेन नहीं करते। ये तीसरी लाइन दृढ़ प्रतीति, प्रतीति का मतलब होता अनुभूति। और हमें जैसे अपन कहते हैं हमें बिल्कुल ऐसी ऐसा भासता है, ऐसी हमें प्रतीति हो रही है, जैसा आपने कहा
टू बी दैट, हम बोलते हैं टू बी दैट,
टू बी दैट,
टू नो इज गुड, टू लिव इज बेटर, टू बी दैट इज परफेक्ट,
सही वैसा ही हो गया। मैं
अभी आप व्यवहार जो बोले टू लिव में आ गए, तो अभी प्रतीति बोले टू बी दैट, टू बी दैट
उस रूप हो जाना, टू बी दैट। तो इस तरह इतने ही रहने में है? आकुलता शिव माही नाता
छब्बीस दिसंबर का प्रवचन शुरू होता है।
वितराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग सम। पहली ढाल में अपन ने क्या पढ़ा, रोज रिपीट करना चाहिए तभी तो याद रहेगा, दो चार दस बार रिपीट करेंगे तो बिल्कुल एकदम पक्का होगा।
और दुखी रहता
तो क्या आंसर हुआ कि चारों गतियों में हम भ्रमण कर रहे हैं और दुख पा रहे हैं, और ये भ्रमण करना और हमारा दुख पाना चारों गतियों का काम नहीं है, हमारी अपनी अज्ञानता का काम। बस इतना आंसर अपने को देना है कि पहली ढाल में चारों गतियां और उनके दुख बता करके हमें क्या बताना चाह रहे हैं, हमें ये समझाना चाह रहे हैं कि हमारी अज्ञानता की वजह से हम यहां पर भटक रहे हैं, और भटकने का दुख ही बड़े से बड़ा दुख है। ये भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि भटकाव ही दुख का कारण है। जैसे किसी को कोई रास्ता मिल जाए तो वो बड़े आसानी से उस रास्ते पर चल करके और जहां पहुंचना है वहां पहुंच सकता है, लेकिन जिसको कोई रास्ता ही नहीं मिला है वो हर तरफ इधर से उधर उधर से उधर भागता है और समझ ही नहीं पाता है कि मैं क्या करूं कैसे करूं, तो ये बड़ी पीड़ा है, इससे बड़ी पीड़ा तो नहीं होती। तो संसार में हमारे साथ भी यही हुआ है कि हम एक भटकाव में उलझ गए और वो चारों गतियों का भटकाव है, और हम सोचते हैं कि ये चारों गतियां ही भटकाने वाली हैं। अपन जब भी इंटरप्रेशन करते हैं या एक्सप्लेन करते हैं कोई भी चीज, आप कहीं भी सुनेंगे तो यही होगा कि चारों गतियां भटकाने वाली हैं, संसार भटकाने वाला नहीं, लेकिन संसार और चारों गतियां भटकाने वाली नहीं है, मेरी अज्ञानता उसमें भटकाने वाली है, या संसार दुख का कारण है, संसार दुख का कारण नहीं है, मेरा अपना अज्ञान दुख का कारण है। यहाँ पर जानने की चीज तो ये है, इस तरह दूसरी ढाल में फिर हमने क्या पढ़ा, हमारी अपनी अज्ञानता का कारण क्या है, या हमारी अज्ञानता किस तरह की है, कारण नहीं, हमारी अज्ञानता किस तरह की है। तो हमारी अज्ञानता किस तरह की है, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, एटीट्यूड जिसको कहें, हमारा एटीट्यूड क्लियर नहीं है। दूसरा, फिर हम जो कुछ भी जानते हैं, हमारा नॉलेज वो भी परफेक्ट नहीं है, और फिर हम जो भी प्रैक्टिस करते हैं, आचरण करते हैं, वो सब भी हमारा परफेक्ट नहीं है। क्योंकि एक बार अगर व्यक्ति का सोच गड़बड़ा जाए तो फिर उसका पूरा जीवन ही गड़बड़ा जाए। ये अपन हमेशा से, कोई ये धर्म में बात लिखी है ऐसे ही नहीं, अपन खुद भी अपने जीवन में फील करते हैं कि अपना सोच गड़बड़ होगा तो फिर हमारा सब कुछ, ज्ञान भी गड़बड़ होगा और हमारा आचरण भी गड़बड़ होगा। तो सबसे पहली चीज कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और उसके लिए कॉन्सेप्ट में कहाँ कहाँ गड़बड़ी, हमारी मान्यता में कहाँ कहाँ क्या गड़बड़ियां हैं, वो बताने के लिए दूसरी ढाल में कि जो जीव है उसके बारे में हमारी धारणा ठीक नहीं है, अजीब के बारे में ठीक नहीं है, जो हमारे कर्म आ रहे हैं, आश्रय हो रहा है, उसके बारे में भी हमारी धारणा ठीक नहीं है, बंध के बारे में, संवर और निर्द्रा के बारे में और मोक्ष के बारे में, क्योंकि ये सात बातें ही हमारे अपने जीवन के लिए, वैसा श्रद्धान करना, वैसा जानना और वैसा ही प्रैक्टिस करना, ये कहलाएगा सच्चा रास्ता। और हमने इन्हीं में मैंने कंफ्यूजन क्रिएट करके रखे हैं, तो वो कौन कौन से हैं ये पूरा दूसरी ढाल में अपन ने पढ़ लिया। तीसरी वाली ढाल में अब जो है वो शुरुआत की है कि हम अपना ज्ञान हटाने के लिए तैयार हैं, हम अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहे हैं। तो जिस व्यक्ति का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है वो कैसा फील करता है। एक्चुअली एक चीज और मैं इसमें स्पष्ट करूं कि पूरा जैन धर्म जो है वो फीलिंग्स पे डिपेंड करता है। जैन धर्म विचारात्मक तो है ही, लेकिन जैन धर्म पूरा अनुभव परक है, अनुभव से निकले हुए विचार ही, जो हमने पहले कहा था कि वीतराग विज्ञान, विज्ञान के मायने है अनुभव से निकला हुआ ज्ञान। और किस व्यक्ति के अनुभव से, जो वीतरागी है उसके अनुभव से निकला हुआ ज्ञान ही वीतराग विज्ञान है, वही हमारे यहाँ पर धर्म माना गया, वही मोक्ष का मार्ग बनता है। तो तीसरी वाली ढाल में और हम चर्चा करेंगे कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और ये सब चीजें क्या हैं। तो जब अपन पढ़ रहे हैं तो ऐसा लगेगा कि ये तो विचार जैसा है, विचार नहीं है, ये पूरा का पूरा हमें अनुभव करना पड़ेगा। जैसे कल हमने समझा कितना लॉजिकल है कि हर आत्मा का, आत्मा चाहती है सुख, तो सुख कहाँ पर मिलेगा, उससे मोक्ष में मिलेगा, तब फिर उस मोक्ष की प्राप्ति का उपाय क्या है, नहीं वो सुख किस प्रकार का है, पहले ये कहा कि सुख चाहते हो तो सुख किस प्रकार का, क्योंकि कई प्रकार का सुख है, एक मेटलिस्टिक होना भी सुख की तरफ जाना है, एक स्पिरिचुअल होना भी सुख की तरफ जाना, एक भौतिक रूप से सुखी होना और एक आध्यात्मिक पारमार्थिक रूप से सुखी होना, आप किस सुख की बात कर रहे हैं। तो कहते हम तो उस सुख की बात कर रहे हैं जिसमें आकुलता नहीं है, आकुलता से रहित या निराकुल अवस्था का जो सुख है वो सुख, तो वो सुख तो भाई मोक्ष में है, तो फिर उसका उपाय क्या है। तो फिर कहते हैं कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, वही उस सुख की प्राप्ति का उपाय है। तब वो सम्यक दर्शन क्या चीज है और ये सब इनकी परिभाषाएं क्या बनाएंगे, इनको हम कैसे फील करेंगे। तो कहते आत्मा में रुचि होना, यही सम्यक दर्शन है, आत्मा को जानना, ठीक ठीक जानना, यही सम्यक ज्ञान है, और अपने आत्मा में ही लीन होना, इसी का नाम सम्यक चारित्र। इतनी छोटी छोटी परिभाषाएं दे दी, पर द्रव्यनते भिन्न आप में रुचि, इसी का नाम सम्यक। और आप रूप को जान पनो, अपने आप को, अपने स्वरूप का, अपनी वास्तविकता का जो बोध है कहना चाहिए, उसी का नाम ज्ञान है। और अपनी आत्मा में जो लीनता है, अपने स्वरूप में जो लीनता है, उसका नाम। लेकिन ये मेरे लिए प्राप्तव्य है, ये मेरे लिए साध्य है, ये मेरे लिए साधन नहीं है। इसका साधन क्या होगा ये देखना पड़ेगा कि अब इसके लिए साधन क्या बनाएंगे। तो कहते हैं कि जो व्यवहार है वो साधन है, और ये निश्चय जो है, जो हमें अल्टीमेट गोल है, जो हमें पाना है, वो हमारा साधन। इस तरह से दो दृष्टियां भी दे दी इसी के साथ में कि ये जो मैंने परिभाषाएं बनाई हैं ये निश्चय नहीं की अपेक्षा से हैं, अब जो आगे मैं कहूंगा वो सब व्यवहार की अपेक्षा से, अर्थात मैं अब इन चीजों को कैसे पाएं इसका उपाय बताऊंगा। पाना ये है, इसको पा लेने का नाम ही निराकुल होना है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों, इस मोक्ष मार्ग पर मैं आरूढ़ हो जाऊंगा तो मैं निराकुल हो जाऊंगा। ठीक है, अब लेकिन इस मोक्ष मार्ग पर आड़ूल होने के लिए या ये चीजें पाने के लिए मुझे और क्या करना पड़ेगा जो कि प्रैक्टिकेबल है, जिसको हम कर सकते हैं? अपन ने कह दिया कि हाँ हमारी आत्मा में रुचि है, तो इतने अकेले से थोड़ी आत्मा में रुचि होती। मैं आत्मा के स्वरूप को जानता हूँ, ठीक है रट लिया, जो लिखा हुआ है वो पढ़ लेंगे अपन कि ये स्वरूप होता है, इतने से थोड़ी काम चलेगा। और मैं अपने आत्मा में लीन हो जाऊंगा, जब अकेले लीन होना कहना आसान है लेकिन लीन होने के लिए कितनी सारी प्रक्रिया करनी पड़ेगी, तो वो कैसे आए? ये प्राप्तव्य है, अब इस प्राप्तव्य को पाने के लिए मैं क्या उपाय करूंगा, तो वो अब आगे कहते हैं। तीसरी खो गई मेरे इसमें, तीसरे नंबर का पढ़ना था ना, या कि तीसरा भी पढ़ लिया था अपन ने, तीसरा फोर्थ से। तब फिर इस आत्मरुचि को पाने के लिए मुझे सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा? आत्मा और अनात्मा, इन दोनों को समझना पड़ेगा। क्योंकि मैं अपने आत्मा में रुचि रखना चाहता हूं तो मुझे देखना पड़ेगा कि मेरी रुचि अभी कहाँ है, और जिस जगह मेरी रुचि है वो क्या चीज है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि मैं अपने आत्मा के अलावा भी और जो चीजें हैं उनको भी समझूं, तब मुझे मालूम पड़ेगा कि मेरी रुचि कहाँ पर है, आत्मा में है कि मैं कहवर रहा हूं। जिन चीजों में मेरी रुचि है वे आत्मा है या अनात्मा है, दो ही तत्व है, जीव है और अजीव है, मुख्य रूप से देखा जाए। और फिर जीव और अजीव, इन दोनों के माध्यम से आश्रय और बंध होता है, इन्हीं के माध्यम से संवर और निजरा होती है, और जब जीव और अजीव दोनों पृथक पृथक हो जाते हैं तब उसी का नाम मुक्ति है, और कोई अलग से ये तत्व नहीं है। तो मैं मुख्य रूप से मैं आत्मा और अनात्मा या जीव और अजीव, इन दोनों को ही जानूं, और अजीब को अजीब मान करके सेपरेट कर दूं, और जीव को जीव मान करके उसमें इंटरेस्ट लें, ये प्रोसीजर है एक्चुअली। तो उसके लिए सबको जानना पड़ेगा, जीव भी जानना पड़ेगा, अजीब भी जानना पड़ेगा, या उस पर भी श्रद्धा करनी पड़ेगी। तो क्या परिभाषा बना दी? जीव अजीव तत्व अरु आश्रो बंधरु संवर जानो निर्जर मोक्ष कहें जिन, जिनेन्द्र भगवान ने जिन जैसा कहा है तिनको ज्यों का त्यों सरथानो, एज इट इज, जैसा स्वरूप कहा है, मुझे नहीं मालूम क्या कहा है, मैं तो सिर्फ उसे स्वीकार कर रहा हूँ। पहले नंबर तो स्वीकृति, फिर जानना शुरू होगा। गुरुजी के पास जाकर के क्या कहते हैं, जो किताब में लिखा हुआ है उसे मैं ठीक मान रहा हूँ, जानता नहीं हूँ क्या लिखा है, आप जो कहेंगे उसे ठीक मान रहा हूँ, आप बताइए पूरी किताब सही है, आप सही हैं, आप मुझे बताइएगा अब मुझे क्या क्या समझना है। ठीक यही चीज है कि आप जो कह रहे हैं और आप स्वयं, आप मेरे लिए स्वीकार है, अब फिर नॉलेज होगी। हालांकि दोनों चीजें एक साथ होती हैं, मजा इसके साथ यह है कि जैसे ही हमें श्रद्धा होती है वैसे हमारा ज्ञान भी सच्चा हो जाता है। हम सोचते हैं कि ज्ञान मतलब बहुत सारी जानकारी, नहीं, ज्ञान का मतलब है कि जो चीज जैसी है उसकी स्वीकृति, वही श्रद्धा है, वही ज्ञान है, दोनों चीजें। देखो जो चीज जैसी है उसको हमने वैसा जानेंगे तो बाद में, पर जैसे ही हमने जो चीज जैसी है उसे वैसा स्वीकार कर लिया, इसका मतलब हम ठीक जानते हैं। नहीं तो बहुत मुश्किल होती है कि किसी चीज को एकदम जल्दी से हम स्वीकार कर ले, पर हमने स्वीकार कर लिया, विश्वास कर लिया है, तो हमारा ज्ञान भी जो है अब हम जो भी जानेंगे या हम अभी तक जो भी जानते हैं वो सब परफेक्ट हो गया। ये इसमें विशेष चीज है। तो ज्यों का त्यों हमें उस पर श्रद्धान करना, ये शुरुआत है, शंका नहीं करना। आगे जाकर के कहेंगे सोई है समकित व्यवहारी, अब इन सब का रूप हम बताएंगे, इन सब का स्वरूप क्या चीज है। हमने कह तो दिया कि इन पर विश्वास कर लो, तो आपने विश्वास भी कर लिया, पर अब जान लो कि ये क्या है। विश्वास करने के बाद अपने यहाँ पर आज के समय में चलता है कि शिक्षा पहले बाद को दीक्षा, अपने यहाँ पर चलता है पहले दीक्षा फिर उसके बाद शिक्षा, ऐसा हिसाब है। पहले दीक्षित हो, वो है तो वही प्रक्रिया, हम आपकी कॉलेज में पहले पढ़ लें फिर एडमिशन लेंगे, क्या पता आप ठीक ठीक पढ़ाते कि नहीं, इतना पैसा काहे को हम बर्बाद करें, पहले थोड़ा पढ़ के देखेंगे, अच्छा लगेगा तो हम एडमिशन ले लेंगे, ऐसा कहता है कोई? नहीं, हम पहले एडमिशन लेना पड़ेगा, एडमिशन लेंगे तब आपको परमिट करेंगे हम क्लास अटेंड करने के लिए, तब हम बैठने देंगे। वही चीज वहां भी है, पहले एडमिशन, पहले हम अपनी श्रद्धा व्यक्त करें। आचार्य जी कई बार कहते हैं कि जिसकी श्रद्धा नहीं है उसे ज्ञान मत देना, नहीं तो बंदर के हाथ में मोती की माला है, वो मोतियों को खाने की चीज मान करके और एक एक करके तोड़ तोड़ के फेंक देगा कि ये तो खाने लायक नहीं, वो तो चना खा के जानता है उसको मोती की
माला। सुनने वाले 10 तरह के होते हैं
श्रोता के, उसमें तीन श्रेष्ठ हैं, तीन श्रोता श्रेष्ठ हैं। ठीक है, आपने बात छेड़ी तो उसको बीच में कर देते हैं कि अपन को उन तीन क्वालिटी का ही होना चाहिए, बाकी एक होते हैं चलनी के समान जो कि सार सार भूत तो निकाल देते हैं और ऊपर थोता जो व्यर्थ है वो रख देते हैं, सुनते वो भी हैं चलनी के समान। एक होते हैं भैंसा के समान जो पानी वानी तो कम पीता है पर मचा पूरा देता है, तो जो सभा में शोक पैदा कर देते हैं, परेशानी में डाल देते हैं, सुनते उनते तो है नहीं ना दूसरे को सुनने देते। ऐसे एक तोता के समान है कि जिनने बस रख लिया है पढ़ लिया और आप पूछिए तुझे वो कहते हैं बता देंगे, पर जीवन में कुछ नहीं, साफ सुथरा हुआ। ऐसा भी उसमें विशेष जो है श्रेष्ठ कौन सा है तो कहते हैं माटी की तरह जघन्य श्रोता है, मिट्टी की तरह कि जिस पर पानी पड़ता है तो उतनी देर के लिए जब तक पानी पड़ रहा है तब तक गीली हो जाती है। ऐसे ही जो व्यक्ति सुन करके थोड़ी देर के लिए भीग जाता है वो फिर ठीक है, उतना तो चलेगा, बाहर निकले तो फिर ज्यों के त्यों, पर जितनी देर सुना उतनी देर तो भीग गए हैं, परिणाम तो भीग गए, उतने में भी उसने बहुत सारा काम कर लिया। फिर उसके बाद कहते हैं कि जो गाय की तरह है वो मध्यम प्रकार के हैं, गाय सूखी रूखी घास खा लेती है लेकिन अमृत के समान दूध देती है। ठीक इसी तरह श्रोता रूखी सूखी चाहे जैसी बात आप उसको कह दीजिए वो अपने भीतर पचा लेगा और उसमें से जो सारभूत है उसको वो अपने पास सेफ रखेगा, दूसरे के लिए देगा। और हंस के समान श्रोता तो खैर सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं कि नीर छीर विवेक, उनके सामने कुछ भी रख दीजिएगा वो उसमें से अपने काम की चीज लेके लेंगे बाकी छोड़ देंगे। तो ये मैंने इस संदर्भ में अपने को जरूरी है कि हम इसमें से कोई एक चीज तभी हमारे काम आएगी, नहीं तो हम तो तोते की तरह। आज कई लोगों को देखता हूं जिनको की परिभाषाएं बिल्कुल रटी हुई, हो सकता है कि आप गड़बड़ा जाए या आपसे कोई कहे कि आपने तो इतने दिन पढ़ा है और आपको याद व्याद तो कुछ भी नहीं है। जैसे वो डॉक्टर साहब से पूछो तो वो कहते देखो भाई कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है, बता होता नहीं पाएंगे कौन सी टर्मिनोलॉजी बिल्कुल नहीं मालूम, पर हम जान गए हैं कि ये चीज ऐसी है। तो मुझे लगा कि वो ज्यादा परफेक्ट है वनस्पति इसके कि जिसको तोता रटन तो सारी चीजें याद है और परीक्षा देकर के वो पास भी हो जाते लेकिन रहते वही है, कहीं जरा भी एक इंच भी खिसकते नहीं लोग, हमने देखा। ये अपने को ध्यान में रखना कि इन सब का स्वरूप हम क्यों समझ रहे हैं। अल्टीमेटली सात आगे जाके कहेंगे कि सात तत्वों का स्वरूप समझने के बाद इन सात में से छह को छोड़ देना है, तुम्हें अपने आत्मा तक आना। मैं तो सिर्फ इसलिए परिचय कराए कि कोई तुम्हें भ्रमित ना कर दे, छह चीजें तुम्हें उस सातवें के समान ना लगने लगे जो तुम्हारा अपना ओरिजिनल है। एक बार मैंने कहीं लिखा था या पढ़ा था कि मैं सच नहीं जानता, ना मेरा सच से कोई परिचय है, ना मैं तुम्हें सच बताना चाह रहा हूं, मैं तो सिर्फ सपनों को पहचान गया हूं, मैं तुम्हें वही बताना चाहता हूं ताकि कोई स्वप्न आकर अपने सत होने का दावा ना कर सके। अपन जब सच्चाई पाएंगे वो तो अपनी ओरिजिनल पाएंगे, लेकिन हमारे भ्रम भी बहुत सारे हैं जिनको हम सच मान लेते हैं। हमें यहां पर जितने भी ग्रंथों में हमने देखा सिर्फ हमारे भ्रम बताए गए हैं कि ये हमारी मान्यताओं की कमजोरी है या हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो बता दी है, तो ओरिजिनल की क्या है वो अपने आप मालूम पड़ जाएगी। इस तरह इसको लें। अब कहते हैं ये अब थोड़ा सा विषय जो है चेंज हो रहा है। अभी ये कहना चाह रहे थे कि हम हर एक का स्वरूप बताएंगे, पर इसके पहले थोड़ा सा ये बता रहे हैं कि जिस व्यक्ति की दृढ़ श्रद्धा हो गई है उसको क्या कहेंगे और जिसकी नहीं हुई है उसे क्या कहेंगे, और दृढ़ श्रद्धा हो जाने के बाद जब उसको वो पा लेता है तो उसे क्या कहते हैं। आत्मा की विभिन्न तीन अवस्थाएं हैं। जिन क्षणों में हम श्रद्धान से रहित होते हैं उन क्षणों में हम बहिरात्मा कहलाते हैं, जिन क्षणों में हमारे भीतर सच्ची श्रद्धा होती है उन क्षणों में हम अंतरात्मा कहलाते हैं। उसमें भी हमारे कैडर हैं, अलग अलग तीन तरह के हैं, तीन हाँ सबको उत्तम मध्यम और जघन्य अंतरात्मा। और फिर उसके बाद जब हम उस स्थिति में अपने आत्मस्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं जो हमारा प्राप्तव्य है तो फिर हम वही हम ही कहलाते हैं परमात्मा। इस तरह से आत्मा की तीन स्थितियों के बारे में ये बताएंगे। बहिरात्म अंतरात्म परमात्म जीव त्रधा है। यहाँ पर जीव तीन प्रकार के हैं, देह जीव को एक गिने, बहिरात्म तत्व मुधा है। तत्व के बारे में मुधा मतलब अज्ञानी, तत्व के बारे में ठीक ठीक नहीं जानने वाले क्या कहेंगे, शरीर को ही अपना मानेंगे। और ये इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के पूरा जीवन जीते हैं। अपन देखते हैं कि कई लोग कई चीजें छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? बॉडी के लिए अनफिट, शरीर के लिए अस्वास्थ्यकारी है, इसलिए छोड़ दिया। उनके भीतर ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि इससे मेरे आत्मा का पतन होता है। नहीं, शरीर की सुविधा के लिए वो कई चीजों को छोड़ देते हैं। तो इस छोड़ने को त्याग नहीं कहेंगे अपन। यहाँ यही चीज ध्यान रखने की है अपने, क्योंकि व्यक्ति बहिरात्मा वो है जो शरीर को ही सब कुछ मान रहा है और उसी की सेवा शुश्रूषा कर रहा है और उसी उसकी वजह से वो बहुत सारी चीजें आचरण में लाता भी है। जैसे कि फॉरेन का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, अगर अपन गौर से देखें, वे बहुत सतर्क है अपने शरीर के प्रति। वे कोई भी चीज ऐसी नहीं खाते हैं जिससे कि शरीर अस्वस्थ हो जाए, बहुत ध्यान रखते हैं वो। तो क्या मतलब हुआ, वे अपन से ज्यादा त्यागी मालूम पड़ेंगे कि ये भी चीज नहीं खाते, ये भी चीज अपने हाथों का, वो चीज धड़ल्ले से चलती है, ड्रग्स वगैरह कई चलती है, लेकिन वो लोग नहीं खाते, उनको मालूम है। तो वो क्या कॉन्सेप्ट है उनका? उनका तो दृष्टिकोण ये है कि मेरा शरीर अस्वस्थ ना, और हमारा दृष्टिकोण कि मेरी आत्मा का पतन ना हो इसलिए मैं छोड़ रहा हूं। ये इसलिए कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। देह जीव को एक गिने, हमने उसको बहिरात्मा कह दिया। और अंतरात्मा किसे हो कहेंगे, इसमें हालांकि वो लाइन नहीं लिखी है, अपने मन से इसमें लगाना पड़ेगा अपने को। अंतरात्मा कौन सी है? जो कि देह और जीव को अलग अलग मानती है, दोनों को अलग अलग मानने वाले, अलग अलग अनुभव करने वाले, इसी में कैडर बन जाते हैं। कुछ लोग हैं जो अलग अलग मानते हैं, कुछ लोग हैं जो अलग अलग जानते हैं, कुछ लोग हैं जो अलग अलग अनुभव करते हैं, इसलिए तीनों हो गए। जो सिर्फ मानते हैं वे तो जघन है, जो जानते हैं वे मध्यम है, जो अनुभव करते हैं वे उत्तम है। यही आगे कहेंगे, उत्तम मध्यम जगत जघन त्रिविध के अंतर आत्म ज्ञानी, उसी को हम ज्ञानी मानेंगे। देखो यहाँ कितना क्लियर हो गया, अज्ञानी कह दिया, तत्व मुधा अर्थात तत्व के मामले में अज्ञानी, उसको तो बोलते हैं बहिरात्मा। और ज्ञानी किसे बोलेंगे? जो कि अंतरात्मा है, शरीर और आत्मा के बीच की भेद रेखा को मानता है, जानता भी है, अनुभव भी करता है। द्विविध संग बिन सुद उपयोगी मुनि उत्तम निज ध्यानी, अपने आत्मा का ही ध्यान करने वाले। और द्विविध संग, संग का मतलब यहाँ है परिग्रह है, ऐसा मानिएगा, संग मतलब परिग्रह। दो प्रकार का होता, एक बाह्य परिग्रह होता है, ये 10 प्रकार का, क्षेत्र वास्तु हिरण्य स्वर्ण धन धान दासी दास कुप्य और भांड, और एक अंतरंग होता मेरे अपने राग देश, 14 प्रकार का। तो ऐसे जो है अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार के भीतर से क्रोध मान माया लोभ को उन्होंने छोड़ दिया है करना, हो जाते हैं ये बात अलग है, लेकिन अपनी तरफ से नहीं करते। और इसी तरह से परिग्रह छोड़ दिया है, हो सकता है उनके पास लोगों से भी अच्छी सामग्री हो लेकिन वो परिग्रह नहीं है, उन्हें भी अंतरंग क्रोध आता हो अंतरंग में, लेकिन वो उनके कर्म के उदय में है, उनने कोई जान बूझ करके क्रोध और कषाय करने की उनने चेष्टा नहीं करी है। इतना ही फर्क है उसमें, क्योंकि आप मुश्किल में तो पड़ेंगे कि दोनों प्रकार के संग छोड़ दिए, मतलब अंतरंग से 14 प्रकार का आप ये कषायें पूरी छोड़ दी, राग द्वेष छोड़ दिया है, नौ नौ कषाय छोड़ दी है, तो छोड़ कहां दी है सब अंदर, लेकिन हम अपनी तरफ से करेंगे नहीं और अपनी तरफ से किसी चीज पर अपनी मालकियत नहीं थोपेंगे कि ये चीज मेरी है। चीजें तो सब रखी हुई है, लेकिन सबको, किसी बढ़िया कमरे में रह रहे हैं, हो सकता है कि एक सामान्य व्यक्ति के पास उतना बढ़िया कमरा ना हो, उस कमरे में रह रहे हैं, लेकिन वो अपना नहीं मानते हैं, वो वहां से धीरे से उठ करके चले जाएंगे तो पीछे मुड़ के भी नहीं देखने वाले कि क्या हुआ उसका। ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि उस व्यक्ति को हमने माना है जिसने कि अंतरंग और बहिरंग परिग्रह को त्याग दिया है, हम साधक उसी को मानते हैं, उसके बिना नहीं। जैसे अपन आगे जाकर के पढ़ेंगे या रत्न शाप्ताचार में पढ़ा हो कि सच्चे देव गुरु की क्या परिभाषा है, तो विषयाशावसाती तो मेरी भावना पढ़ते हैं, विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भावधन रखते हैं, वही चीज है। विषय आरंभ परिग्रह इन सबसे जो रहित हो गए हैं उन्हीं को हमने साधु माना और उसी को ध्यानी माना, और वही शुद्ध उपयोगी है। अगर शुद्ध उपयोग होगा या कि कहना चाहिए उत्तम अंतरात्मा कहेंगे, तो हम इनको ही कहेंगे उत्तम अंतरात्मा। इतनी सारी चीजें नई नई आ गई हैं, देखिएगा संघ के मायने क्या है, परिग्रह, और द्विविध मतलब दो प्रकार का, अंतरंग भी और बहिरंग। अंतरंग के मायने क्या, हमारे क्रोध मान माया लोभ, ये अंतरंग परिग्रह हैं, और बहिरंग मतलब ये सब जो सामग्री बाहर में फैली हुई है वो सब बहिरंग। और परिग्रह कब बनता है, कोई भी चीज जब हमारी इंडल्जिंग होती, जब हमारी मूर्छा होती, जब हमारा ममत्व भाव होता है, तब कोई भी चीज परिग्रह बन जाती है। देखिएगा, शरीर भी परिग्रह बन जाता है जब शरीर के प्रति मूर्छा होती है, आहार भी परिग्रह बन जाता है जब उसके प्रति हमारी ग्रद्धता होती है। ये हमें ध्यान में रखना है। हमारे यहाँ पर इन चीजों को परिग्रह नहीं माना है, हमारे यहाँ पर अंतरंग के भावों में जो ममत्व भाव है उसको परिग्रह माना, ये अपन ध्यान में रखेंगे। तो दो प्रकार का, एक आज्ञा शुद्ध उपयोगी, तो मतलब क्या हुआ, उपयोग के मायने क्या होता, चेतनता, एक अपन ने पढ़ी परिभाषा, चेतन को है उपयोग रूप है। हाँ, तो उपयोग के मायने क्या हुआ, कॉन्सियस। हमने एक बार कहा था कि अपन शॉर्ट में कह दें, हालांकि उतना परफेक्ट नहीं है, पर फिर भी समझने के लिए, हमारा कॉन्सियस, हमारी चेतना, वही उपयोग है। और चेतना दो प्रकार की होती है, एक देखने रूप चेतना होती है, एक जानने रूप चेतना होती, इसलिए हमने उपयोग को क्या कहा, सामान्य सा ज्ञाता दृष्टा, जानना देखना ही उपयोग है। जानने देखने को उपयोग कहते हैं, क्योंकि अच्छा उपयोग का सामान्य अर्थ क्या है, यूज, यूसेज, उपयोग में आना। लेकिन अपन थोड़ा सा गौर से देखें, अपन कई बार कहते हैं कि भाई आपका उपयोग कहाँ है, मतलब आपका मन कहाँ, आपको कहाँ, आपका ख्याल कहाँ है आपका, ये उपयोग शब्द वही यहाँ पर है कि आपका उपयोग कहाँ है, अर्थात आप किस चीज को जानने देखने में लगे हुए हैं, किस चीज को समझने में लगे हुए हैं, आपकी दृष्टि कहाँ है। ये तो इसलिए उपयोग की क्या परिभाषा हुई, जानना देखना है, क्योंकि वो दो ही रूप में होता है, या तो जानते हैं या कि देखने रूप हो, दो ही क्रियाएं होती हैं। अब वो उपयोग भी तीन प्रकार का होता है, ये अपने को यहीं पर थोड़ा समझ लेना पड़ेगा, इसमें नहीं दिया हुआ है। वो उपयोग तीन प्रकार का ऐसा होता है, एक होता है शुभ उपयोग, एक होता है अशुभ उपयोग, एक होता है शुद्ध उपयोग। ऐसा अपन तीन तरह का उसको विभाजित करेंगे। अशुभ किसे कहेंगे, विषयानुरागः, अशुभ उपयोगः, जब मैं विषयों में अनुरक्त हो जाता हूँ, अर्थात पांचों इंद्रियों के विषयों में अनुरक्त हो जाता हूँ, तब मेरा उपयोग अशुभ है। धर्मानुरागः, जब मैं धर्म ध्यान में लगता हूँ, तब मेरा उपयोग शुभ है। और निरुपरागः, जब मैं राग द्वेष से रहित होकर के अपने आत्म ध्यान में लगता हूँ, तब मेरा उपयोग शुद्ध। ऐसी परिभाषाएं, बहुत छोटी परिभाषाएं हैं, लेकिन बहुत बड़ी क्लास की परिभाषाएं, ये ध्यान रखना। ये प्रवचन सारजी में है, मुनि महाराज जी के लिए पढ़ाई जाती हैं। अब तो हर आदमी पढ़ने लगा, तो अकेले पढ़ने से मजा थोड़ी आता है, अकेले पढ़ने से तो ज्ञान भर, अपने अकेले पढ़ने से तो बुद्धि बढ़ती है, बस और कुछ नहीं होता। और आज जो है बहुत तेजी से बढ़ रही बुद्धि, लेकिन अनुभव, हमने ये कहा है कि हम बुद्धि नहीं बढ़ाना चाह रहे, हम आपका अनुभव बढ़ाना चाह रहे हैं। धर्म हमारा अनुभव बढ़ाता है, धर्म हमारे अनुभव को बिल्कुल ठीक ठीक करता है, हमारी बुद्धि को नहीं। बुद्धि तो कोई भी बढ़ाने वाली चीज, उपद्रव तो खड़ा करती बुद्धि, अनुभव नहीं उपद्रव खड़ा करता। एक उदाहरण है, मैं हमेशा देता हूँ कि बुद्धि कैसे झगड़ा पैदा करती है। गुड़ का एक ठो मिष्ठान आया है, बहुत मीठा है, और बीचों बीच उसको रखा गया है, और पांच लोग चारों तरफ उसको घेरे बैठे हैं, और उस पर डिस्कशन चल रहा है, ये इतना मीठा है, और ये इस चीज से बनता है, और ये उसमें मीठापन कहाँ से आता है, शकर, शकर का फॉर्मूला क्या है। तो वो सारा डिस्कशन कर रहे हैं, और एक व्यक्ति दूर से जो है उनके आकर के देखता है कि क्या मामला क्या है, बड़ी तेजी से चल रहा है, एक दूसरे को आर्गुमेंट दे रहे हैं, और भारी लॉजिक डिस्कशन कर रहे हैं। आकर के वो देखता है कि अच्छा ये मामला है, तो वो पांचों तो अपने उसमें लगे थे कि कैसा स्वाद है, इस बात को सिद्ध किया जा रहा। वो आया, उसने धीरे से हाथ बढ़ाया, खाया, कहने अब तुम लोग उलझो, स्वाद तो बहुत अच्छा है, मैंने खा के देख लिया। यही अपने साथ आज है, कोई भी इन चीजों को लेकर के अपनी अनुभूति में उतारने के लिए कभी शांति से बैठ नहीं रहा है, वो सिर्फ इस उलझन में है कि मैं कितना अच्छे से समझ लूं और दूसरे को समझा दूं, और ये मान करके बैठूं कि मैं ठीक समझता हूं, बाकी सब अज्ञानी। आज अधिकांश, एक जगह मैं पढ़ रहा था तो लिखा था कि आज का ज्ञान सिर्फ अपने ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं, दूसरे को अज्ञानी साबित करने के लिए, और कुछ नहीं। हमें ऐसा ज्ञान नहीं पाना है जो कि दूसरे को अज्ञानी साबित करे, हमें वो ज्ञान पाना है जिससे कि हम अपने आप को जान सकें। यही प्रक्रिया पूरी है, अपने में रुचि, अपने को जानना, अपने में लीनता, हमारा प्राप्तव्य ये है। हम फिर चाहे जिस तरह से करें, लेकिन हमें अल्टीमेटली इस चीज को ध्यान रखना है कि पहुंचना तो वहां है। मैंने आत्मा के बारे में जान लिया, पर मेरी आत्मा में बिल्कुल रुचि नहीं है, ना अपनी आत्मा में, ना दूसरे की आत्मा में। दूसरे के शरीर में ज्यादा रुचि है, दूसरे के वस्त्रों में ज्यादा रुचि है, दूसरे के सामान में ज्यादा रुचि है, लेकिन मेरी रुचि दूसरी आत्मा में है या नहीं है, मेरी अपनी आत्मा में रुचि है या मेरे अपने शरीर में, मेरे अपने वस्त्रों में, मेरे अपने ऑर्नामेंटेशन और ये सब चीजों में, ये जरा सा देखना पड़ेगा। तब आप माने जाएंगे कि हाँ आपने जो सीखा है वो ठीक ठीक सीखा, नहीं तो परिभाषा तो आपको है। अनुभव तो है नहीं, तो उपद्रव खड़ा होता तो इससे तो और उपद्रव खड़ा हुआ, इससे अच्छे अज्ञानी रहे आते तो ज्यादा ठीक था, कम से कम अहंकार तो नहीं आता। तो ये एक मैंने बहुत कठिन सी चीज है ये शुद्ध उपयोग, और कितने आसानी समझ में आ गई आज इस पर जो है मत मतांतर खड़े हो गए इसी को लेकर के। उपयोग तीन प्रकार के होते हैं, शुभ उपयोग होता, अशुभ उपयोग होता और शुद्ध उपयोग, तीनों की इतनी स्पष्ट परिभाषा है। जब मेरा मन विषय कषाय में प्रवृत्त होता है उन क्षणों में मेरा उपयोग अशुभ होता है, जिन क्षणों में मैं धर्म ध्यान में लीन होता हूँ उन क्षणों में मेरा शुभ होता है, और जिन क्षणों में मैं सबसे परे निरुपरागाह राग द्वेष से रहित हो जाता हूँ वे क्षण मेरे शुद्ध उपयोग के हैं। क्या ये सब चीजें नीची अवस्था में बन सकती हैं? कोई सामान्य गृहस्थ राग द्वेष से मुक्त होकर के थोड़ी देर अनुभव कर सकता है? बहुत कठिन है, लेकिन शुद्ध उपयोग जो है कहीं भी सिद्ध कर लेते हैं। और यहाँ पर क्या कह रहे हैं, द्विविध संग बिन, सबसे पहली कंडीशन ये है कि शुद्ध उपयोग उसको होएगा जो दो प्रकार के परिग्रह से मुक्त हो गया। बुद्धिपूर्वक जिसने दोनों प्रकार के परिग्रह का त्याग कर दिया वो शुद्ध उपयोगी है, उसे ही हम मुनि कहेंगे, और वही अपने आत्मा का ध्यान करने वाला उत्तम ध्यानी है, उत्तम अंतरात्मा है। इतनी सारी बातें उत्तम अंतरात्मा के अंतर्गत बता दी। अंतरात्मा तो तीन है लेकिन उसमें सबसे श्रेष्ठ कौन है? जिन्होंने आत्मा और शरीर को जुदा जुदा मान करके भी अनुभव करना शुरू कर दिया, मानने जानने से आगे बढ़ गए हैं, अनुभव करने वाले हैं। हमें यही चीज करनी चाहिए। अब आगे कहते हैं मध्यम अंतर आत्म है जे देश व्रति अनगारी, यहाँ पर कहीं कहीं अगारी दिया हुआ है। अगारी शब्द सही है, ये अनगारी शब्द जो है वो ठीक नहीं है, वो इस ये बात को चेंज किया गया है ये सिद्ध करने के लिए कि छठे गुण स्थान में जो मुनि महाराज हैं वे मध्यम हैं और साथ में हैं वे उत्तम हैं, ऐसा सिद्ध करने के लिए दिया गया, और कोई उसके पीछे अगारी है वो देश व्रति अनगारी नहीं, देश व्रति अगारी इसको ऐसा लेंगे। वे मध्यम अंतरात्मा हैं। मध्यम अंतरात्मा कौन है? जिनके पास महाव्रत नहीं है, जो देश व्रति है, हाँ अनुव्रत है और घर में रहते हैं, अगारी है, अगारी अर्थात घर में रहने वाले। कई लोग इसका अर्थ ऐसा लगाते हैं कि देशव्रति और अनगारी, अनगारी अर्थात ग्रह का त्याग कर दिया है लेकिन अभी निचली अवस्था में है, साधु तो हैं लेकिन अभी बाह्य प्रवृत्ति में लगे हुए हैं, वे भी मध्यम अंतरात्मा हैं। लेकिन ऐसा मेन स्क्रिप्ट में कुंदकुन स्वामी ने ऐसा कहीं नहीं लिखा, उन्होंने कहा कि चाहे छठे में रहें चाहे सातवें में रहें, अगर परिग्रह के त्यागी हैं तो वे शुद्ध उपयोगी ही हैं। थोड़ी देर के लिए शुभ में भले ही आते हैं पर कहेंगे उनको शुद्ध उपयोगी। श्रावक थोड़ी देर के लिए अशुभ में चला जाए लेकिन कहलाएगा शुभ उपयोगी, भले विषय कषाय में चला जाता घर गृहस्थी में रहने पर लेकिन कहलाएगा शुभ उपयोगी। क्यों कहलाएगा? क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है इसलिए हमने उसको शुभ उपयोगी, और इन्होंने तो जो कॉन्सेप्ट क्लियर किया उसको पा भी लिया है इसलिए उनको शुद्ध उपयोगी। जो मेजॉरिटी, जैसे एक दूसरा उदाहरण दे देते हैं हम, ये आम का बन है। अच्छा भाई आप आम का वन कह रहे हैं, इसमें तो नीम के पेड़ भी दो चार तो लगे। भैया दो चार लगे होंगे, बबूल के भी लगे होंगे दो चार, लेकिन सैकड़ों तो आम के ही हैं इसलिए हमने आम का पेड़ कहा, बहुलता आम की है इसलिए। इसी तरह बहुलता राग द्वेष से रहित वितरागता की है इसलिए हमने उसको शुद्ध उपयोगी कह दिया। भले ही वो थोड़ा सा नीचे आएंगे और शुभ क्रियाएं करते मालूम पड़ेंगे, अभी जैसे शुभ क्रिया ही तो कर रहा हूँ, पढ़ रहे हैं अपन, डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये तो छठा गुण स्थान है तो इस समय शुद्ध उपयोगी नहीं माने जाएंगे? कहते नहीं, ऐसा नहीं है। शुद्ध उपयोग क्षण भर में चला जाता है। एक बार हम आपको एक बहुत छोटा उदाहरण बताएं, हम डेढ़ घंटे तक जो है वो नीरज जी आते हैं उनके साथ चर्चा करते रहे, काफी गहरी चर्चा हो रही थी, डेढ़ घंटे के तक हो गए टाइम एकदम देखा डेढ़ घंटे, तो एकदम बोले वो बोले महाराज ये तो आपकी शुभ उपयोग की दशा रही, बहुत लंबी रही, अंतर्मूर्ति है आप तो, डेढ़ घंटे से जो है शुभ उपयोग में लगे हुए हैं, आपका छठा गुण स्थान रहा ये तो। मैं भी एक बार, क्योंकि उस समय ज्यादा जानता नहीं था, 84 की बात है, तो मुझे भी एक बार लगा कि ये तो गड़बड़ हो गई, बात तो सही है। तो बोले नहीं नहीं, मैं थोड़ा सा संकोच में आया मैं कि हाँ बात तो सही हो गई। बोलते नहीं महाराज, आप सावधानी पूर्वक वचन बोल रहे हैं, ये सावधानी आपकी अप्रमत्तता है, यही सातवां गुण स्थान है, और जो आप बोलने का उद्यम कर रहे हैं वो छठा गुण स्थान है। लेकिन आप बीच बीच में सावधानी, मैं आगम के विरुद्ध नहीं बोलूंगा, इस तरह का आपका निर्णय है और आप ध्यान रखते हैं कि आगम के विरुद्ध ना बोल जाऊं, ये सावधानी आपकी अप्रमत्तता है, ये सातवां गुण स्थान है। और बोलना छठा। भोजन ग्रहण कर रहे हैं तो भोजन ग्रहण करने के लिए हाथ बढ़ा देना, ये तो नीचे आ गए, प्रमाद है, लेकिन ऐसे ही नहीं खा लेना है, शोधन करना है, ये अप्रमत्त। फौरन सातवां हो गया, फिर भोजन करने लगे, करने का भाव हो गया, ले लिया मुंह में, तो छठा, स्वाद नहीं लेना है, हर्ष विषाद नहीं करना, ये सातवां गुण स्थान। फिर हाथ बढ़ा दिया, फिर छठा हो गया, फिर शोधन, फिर खा, हमेशा छठा सातवां छठा, ये प्रमत्त अप्रमत्त हो सा रहता। मैं इसलिए ये चीज बता रहा हूँ ताकि ये क्लियर हो जाए कि इसमें जो अनगारी शब्द रखा है वो विचारणी है, बाद को ये सुधारा गया है, एक्चुअली अगारी है वो, तो जो देशव्रति और अगारी हैं, हाँ, वो एक ही चीज है। घर में रहने वाले, क्योंकि इतने विशेषण लगा रहे हैं, जैसे यहाँ लगाए थे कि मुनि है, उत्तम निज ध्यानी है, शुद्ध उपयोगी है, दो प्रकार के संघ से मुक्त है, इनको क्या कहेंगे? घर में रहते हैं, देशव्रति हैं, देशव्रति अर्थात पार्शियल, वो पांचों पापों का एक देश त्याग जिन्होंने कर दिया है, अर्थात अंतरंग बहिरंग परिग्रह में से कुछ थोड़ा सा त्यागा है, पूरी तरह से नहीं त्यागा है, और घर में रहते हैं, ये यहाँ शो करना, ये मध्यम अंतर आत्मा है, है? और जघन्य कहें अविरत सम दृष्टि, अविरत सम्यक दृष्टि अर्थात जिनकी सिर्फ श्रद्धा है, जिनने माना है कि सात तत्व होते हैं और जैसा स्वरूप है वैसा मैंने स्वीकार कर, कुछ उसके लिए प्रयास नहीं किया है। अगर थोड़ा सा व्रत नियम ले लेंगे तो प्रयास शुरू हो गया, और पूरे व्रत नियम ले लेंगे तो उत्तम हो जाएंगे। तो जघन्य से मध्यम, जघन अंतर आत्मा में संतुष्ट है आज लोग, इससे हमें तो यही लग रहा है। देखो आप नहीं, आप मन मानते हैं अविरत सम्यक दृष्टि है तो जघन अंतर आत्मा उसी में संतुष्ट है, वो खुश कि चलो इतना ही प्रयास ही नहीं कर रहे हैं वो
देव लोगों के,
या फिर मुझे लगता है कि उनको अपने ऊपर विश्वास नहीं है कि मैं हो गया हूँ कि नहीं, पहले नक्की तो हो जाए फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो लगता है वो अभी नक्की हो भी नहीं पाएगा, पूरी जिंदगी नहीं हो पाएगा शायद, नहीं हमें ऐसा नहीं करना है, हमें रुकना नहीं, हमें हमेशा उसमें कहते हैं कि भले ही नीची जगह रहो लेकिन ऊंची चीज को पाने की भावना, जम सके तम की रही जम न सके तहे श्रद्धा मान, हम श्रद्धा तो रखें जहां है वहां पर, हमेशा ऊंची चीज की श्रद्धा रखें, ऐसा नहीं करें कि ऊंची चीज को खींच करके और नीचे स्तर पर ले आए और वहीं पर फील करें कि हाँ सब मिल गया यहीं पर मिल गया, नहीं उस चीज को पाना है तो उसकी ऊंचाई छुए अपन, ये तो तीनों ही शिवमग चारी, ये नहीं मानना कि उत्तम मध्यम जगन है तो भाई उत्तम वाले मोक्ष मार्ग ही है, नहीं तीनों हैं, तीनों ही मोक्ष मार्ग पर चलने वाले हैं, तीनों शिवमग पर शिवमग